ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के छठे स्कंद का 16वां अध्याय और श्लोक 5 पांचवां श्लोक पढ़े। थोड़ा ये और लाउडर हो सकते, अब तक क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे कहने के लिए। मेरे पीछे दूर आई। बंधु ज्ञात्यारि मध्यस्थ मित्रो दासिन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः बंधु दोस्त ज्ञाति कुटुंबी अरि शत्रु मध्यस्थ विचौलिये मित्र शुभचिंतक उदासीन उदासीन विद्विषः अथवा द्वेषी सर्वे सभी एव निस्संदेह हि निश्चय ही सर्वेषां सबों का भवन्ति होते हैं कर्मशः क्रमशः धीरे धीरे मिथः परस्पर अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के जय श्री प्रभुपाद की। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवहमान है जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है और जिसमें सभी लोग समयानुसार मित्र कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन मध्यस्थ द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबद्ध नहीं है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में यह हमारा व्यवहारिक सिद्ध अनुभव है कि जो व्यक्ति आज किसी का मित्र है वही कल उसका शत्रु बन जाता है। मित्र अथवा शत्रु, परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध वास्तव में हमारे भिन्न भिन्न व्यवहारिक व्यवहारों से उत्पन्न होते हैं। चित्रकेतु महाराज अपने मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, किंतु वे चाहते तो इस स्थिति को भिन्न रूप में भी सोच सकते थे। वे यह सोच सकते थे कि जीवात्मा पिछले जन्म में मेरा शत्रु था जो अब मेरा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए असमय प्रयाण कर रहा है, तो अपने मृत पुत्र को अपना शत्रु सोचकर वे शोक करने के बजाय अपने शत्रु की मृत्यु पर उल्लसित क्यों नहीं हुए। जैसा कि भगवद्गीता 3:27 में कहा गया है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। वास्तव में प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ घटित होता है। अतः सत्व गुण की संगति से जो आज मेरा मित्र है वही कल रजो तथा तमो गुण की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। प्रकृति के इन गुणों के कार्यशील होने से ही हम मोहवश अन्यों को मित्र शत्रु पुत्र या पिता मान बैठते हैं। तो यह जो श्लोक है उक्ति है, महाराज चित्रकेतु के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित होकर उसने बात कही गई, वह कही। आप लोग यह प्रसंग बहुत दिन से सुन ही रहे हैं, चित्रकेतु का उपाख्यान। यह उपाख्यान प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज के एक प्रश्न से। परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने का कारण यह था, वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा था। कथा जानते हैं, वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा था और युद्ध के अंतिम समय में, एकदम अंत में, जहां ऐसी परिस्थिति थी कि एक दूसरे के जान की खतरा था, मारना काटना हो रहा था, उस समय वृत्रासुर ने भगवान से कुछ प्रार्थना किया। वृत्रासुर का पूरा पूरा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था युद्ध भूमि में। आप लोग जानते हैं बहुत से दो तीन ऐसे श्लोक हैं, चार श्लोक हैं, इसमें से एक श्लोक के विषय हम चर्चा करते हैं। वृत्रासुर ने भगवान से मांगा है कि हे भगवान, मेरी ऐसी स्थिति कर दीजिए। कैसी स्थिति? अजात पक्षा यो मातरम खगा। खग मतलब ख मतलब आकाश, ग मतलब गमन कर, पक्षी को खग कहते हैं क्योंकि वो आकाश में चल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। आप लोग भी आकाश में उड़ सकते हैं लेकिन आपको उड़ने के लिए कोई मैकेनिकल सहायता चाहिए, प्लेन चाहिए, इसलिए आपको खग नहीं कहा जाता। आप अपने से नहीं उड़ सकते, आपको उड़ना होगा तो कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट है, प्लेन है, उसमें जा सकते हैं। लेकिन पक्षियों को कोई आवश्यकता नहीं है, जिधर जब चाहे उड़ सकते। तो उन्हें अजात पक्षा युवखा मातरम खगा। आप लोग बात जानते होंगे, जो पक्षी बच्चे देते हैं तो डायरेक्ट बच्चे का जन्म ही होता है, एक अंडा होता है। पक्षी प्रसव करते हैं, स्त्री पक्षी प्रसव करती है तो बच्चा तुरंत नहीं जन्म, एक अंडा होता है और अंडे को वह पोसती है। ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है, अंडे को केवल पक्षी से टच करते हैं और टच मात्र से वह उसमें जीवनी शक्ति का संचार होता है। और एक दिन उसके अंडे को लोग फोड़ते हैं, जब उनको पता लग जाएगा कि मैच्योर हो गया है बच्चा, परिपक्व हो गया है, तो पक्षी बड़ी सावधानी से, बड़ी धीरे से, बड़ी साइंटिफिक ढंग से उस अंडे के जो सेल को तोड़ देते हैं, तो बच्चा आता है। जब वो बच्चा आता है तो उसका आंख पहले बंद रहता है, आपको अनुभव है ना, कहीं देखे हैं खोता है, आंख ऐसे बंद रहता है, पलक रहते गिरा रहता है, और उसको पंख नहीं होता है, पंख भी नहीं जम, पंख बाद में धीरे धीरे जमता है जिससे वो सहारा से उड़ सकता है। तो अजात पक्षा यो मातरम खगा। वृत्रासुर ने कहा कि हे भगवान, तो आप समझे, जिसके उस बच्चा वो कंप्लीटली 100% आश्रित है अपनी माँ पर, पंख नहीं देख भी नहीं सकता है, लेकिन वह किस पर आश्रित रहा, पूरा शरणागत करता है, कौन सा पालन उसकी माँ करती है, उसके पिता करते हैं। तो जैसे एक पक्ष पंख विहीन पक्षी का जो बच्चा है कंप्लीटली अपनी माँ पर आश्रित है, उसका और कोई सहारा नहीं है, ठीक है भगवान मेरी भी स्थिति वैसी हो जाए। अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्ष वैसा पक्षी जिसके पंख नहीं जमे हुए हैं, जिसके नेत्र भी उन्मिलित नहीं हो, थोड़े देर के बाद नेत्र धीरे से खोलता है, पंख आता है तो वह उड़ सकता है, चाहे दे सकता है, लेकिन कुछ दिन तक ऐसी स्थिति होती कंप्लीट, देखे उसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं होता है, अपने से तो कुछ कर नहीं सकता। तो अजात पक्षा यो मातरम खगाश तन्यम यथा वस्त्रा सुधारता। हे भगवान, बिना पंख विहीन छोटे छोटे पक्षी के जो बच्चे हैं, जैसे पूरा पूरा अपनी माँ पर आश्रित रहते हैं, माँ खिलाएगी तो बेचारे खा सकते हैं। आप लोग शायद देखे होंगे, चाहे देख, जो घोंसला होता है, जब उस अवस्था में बच्चे रहते हैं तो पक्षी जाते हैं चारा भोजन इकट्ठा करने के लिए, तो अपने बीक में मुंह में लिए रहते हैं, अच्छा वहां आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं, आंख नहीं खुलते, मुंह खोल देते हैं, जान जाते हैं कि हमारी माँ है, तो उसमें उनके मुंह में जो चारा लाती है भोजन डाल देती है। तो उस तरह की हमारी स्थिति, स्तन्यम यथा वस्त्र तरह सुरा। दूसरा उन्होंने कहा, जैसे अजात पक्ष जिसके पंख नहीं जमे हुए पक्षी पूरा पूरा अपनी माँ पर पिता पर आश्रित रहता है, वही उसका भरण। हे भगवान, मेरी भी वही स्थिति हो जाए। ऊंची स्थिति है, अपना कोई नहीं, वास्तव में इसमें कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों की मान्यता है कि वह है, वह सहारा देगा, वह सहारा। अस्तन्यम यथा वह सतरा सुधारता, थोड़ा उसमें देर हो जाएगा तो हम उसको नहीं कहते हैं, तो बहुत लंबा है कि हम सब्जेक्ट मैटर। तो वहां पर देखा गया युद्ध भूमि में एकदम युद्ध चल रहा था, एक दूसरे की जान मार काट की स्थिति पड़ती और चारों तरफ। तो वहां जब देखा उसका मन इतना भगवान में बढ़िया से लगा हुआ था, पूरा पूरा उसका चेतना भगवान में लगा हुआ था, तो यह जो वर्णन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज को बहुत इस बात पर आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है और उसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए यह उपाख्यान जो कथानक कथा रूप में वर्णन किया गया हुआ है, उसने पूछ कि परीक्षित महाराज पूछे सुखदेव गोस्वामी से, समझ गए ना, वृत्रासुर के मानसिक अवस्था का वर्णन किए, शरीर से तो युद्ध चल रहा था, मार काट धनुष बाण चल रहा था कि मन पूरा भगवान के चरणों में लगा होता, भक्ति में उसका मन सारा बोर था। तो उन्हें रजस तम स्वभावस्य ब्रह्मन वृत्रस्य पाप मन नारायणे भगवती कथम आसीत दृढ़ा मति, ये वृत्रासुर असुर था, जानते हैं ना, से हम लोग अंग्रेजी में डीमन कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण से वो पापी नहीं था, वो पाप ही था, वो जन्म लिया था जिस समय अग्नि कुंड से प्रकट हुआ, एकमात्र उसका काम था देवताओं को दुख देना, दूसरों को दुख देना, और दूसरा कोई मिशन नहीं था, कुछ अपना काम नहीं था, केवल का दूसरे। तो ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही पापी कहते हैं, जो पाप करता है, लेकिन वो इतना पाप कर लेता है कि अब अलग से उस आइडेंटिटी नहीं रहता, उसको पापी कहते हैं, तो पाप था वो, कहते वो तो पापी था। तो नारायणे भगवती कथम आसीत दृढ़ा मति, तो वैसे पापी व्यक्ति की नारायण में, भगवान में, कृष्ण में ऐसी दृढ़ मति कैसे लगी थी, प्रश्न समझी। साधु महात्मा का लगा हुआ आश्चर्य की बात नहीं है, भजन करते हैं, मंगल आरती में इकट्ठे हैं, संसार विभावरी से गान हो रहा है, उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ, वो तो समझ में आ सकता है, हालांकि वो भी नहीं लगता है। हम लोग खड़े रहते हैं, लाख प्रयास करते हैं भगवान का देखते हैं, तो मन इधर उधर रहता है ज्यादा, 24-25 मिनट में ज्यादा इधर उधर घूमता रहता है मन एकदम सामने। तो यह तो असुर था। कथम आसित दृढ़ा मत, इतना दृढ़ मति कैसे लगी, यह आश्चर्य की बात है। फिर कहते हैं इस प्रश्न को ही क्लियर कि देवा नाम शुद्ध सत्वा नाम ऋषिणाम चामलात्मनाम भक्तिर मुकुंदे मुकुंद चरणे न प्रायण प्रजा। प्रश्न को ही वो क्लियर करते हैं, प्रायः देखा गया, प्रायः शब्द का संस्कृत में तब प्रयोग होता है जब 100 में से लगभग 97-98 प्रतिशत उस दिशा में होता है, उसको प्रायः कहा जाता है। तो देवा नाम शुद्ध सत्वा नाम देवता, बड़े इंद्र चंद्र इत्यादि देवता, जिनका मति, जिनकी चेतना कभी सत्व गुण के घेरे से बाहर नहीं जाती है, देवता लोग होते हैं हमेशा उस सत्व गुण में रहते हैं, सत्व रजस और तमस, तो उनके मन की वृत्ति कहां तक जाती है कि उस सत्व गुण के ही घेरे में रहती है, रजोगुण और तमोगुण को टच ही नहीं करता उनका मन। और ऋषि राम और ऋषि जो तपस्या करके व्रत करके समाधि से अपने मन को एकदम शुद्ध कर लिए, अमल आत्मन, मल मतलब दोष, काम क्रोध लोभ मोह दोष का है, लेकिन ऋषियों का मन कैसा होता है, अमल एकदम शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है, रजोगुण तमोगुण उसमें होता ही नहीं, तो देवता लोग बड़े बड़े ऋषि लोग वे लोगों के मन में भी वे लोग भी प्रायः मुकुंद चरणे भक्तिनो, मुकुंद के चरणों में कृष्ण के चरणों में उनकी भी भक्ति प्रायः नहीं हो जाती। ये देवताओं की बात है, ऋषि मुनियों की बात है, जिनका सत्व गुण से बाहर उनके चित्त की वृत्ति जाती नहीं है, केवल सत्व गुण में ही रहते हैं, शुद्ध हो रहते हैं, उनके मन में कभी काम था लोभ विकार क्रोध आता ही नहीं है। उन लोगों का भी मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है। तो उन्होंने माने सुखदेव को स्वामी को ऐसे आप कह सकते हैं कि नहीं लगता है, कुछ लोग तो लगता है ऐसा कह सकते हैं, एकदम किसी का नहीं लगता है, नहीं लगता है। मुक्ता नाम प्रसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रसन्नतात्मा कोटि स्वपी महामुन, नहीं किसी किसा लगता है कहते हैं। मुक्ता नाम जो मुक्त हो गए हैं, सिद्धा नाम जो सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था में आ चुके हैं, नारायण पर सुदुर्लभ, वैसे तो दुर्लभ लोग होते हैं, वैसे महात्मा बहुत नहीं होते हैं, वो ऐसा नहीं कोई ऐसे महात्मा बहुत होते हैं, वे कोटि स्वपि करोड़ों करोड़ों सिद्ध महात्माओं में सिद्ध जो महात्मा हो गए भक्त हो गए, तो करोड़ों करोड़ों में कोई इक्का दुका होता है, हजार में एक दुका नहीं कह, सौ में एक दो नहीं, लाख में तो भी एक दो नहीं, कहा है करोड़ में इक्का दुका एक। तो ये तो होता है, तो अयह तो, और इसकी स्थिति क्या है, वृत्रस्तु और वृत्रासुर, उसमें कैसे उसके विषय में कहते हैं कि वृत्रासुर ये पापी पाप था, मूर्तिमान प्रश्निफाई पापी था, सर्वलोकोपतापनम और दुनिया के जीवों को दुख देना ही एकमात्र इसका काम था, और कुछ काम नहीं था इसका। क्या आप लोग तो और कुछ करते हैं कर रहे, उसका कुछ नहीं, एकमात्र काम था दूसरों को सताना है, देवताओं को मारना है काटना है। तो ऐसे व्यक्ति का इत्थम दृढ़मति कृष्णे, ऐसे व्यक्ति का कृष्ण में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ किसी देवता में लगा होता तो मान सकते हैं, दूसरे अवतार तो स्वयं भगवान इत्थम दृढ़मति कृष्णे आसित, उसका मन भगवान में लगा हुआ था, मन भगवान में लगा, और वह कहां स्थित था, मंदिर में नहीं लगा था, ऐसा नहीं कृष्ण बड़ा मंदिर में बैठकर उसका मन भगवान में लगा, संग्राम संग्राम मतलब युद्ध, जहां युद्ध चल रहा था, एक प्राणों पर खतरा था, सबसे ज्यादा उसी पर खतरा था, उसके लिए वज्र बनाया गया, उसे मर भी गया उसी में, उल्वण युद्ध में, वो सामान्य युद्ध नहीं था, एक तरह से पूरी देवताओं की सेना थी, इंद्र के हाथ में वज्र लिया था, पूरी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको नष्ट कर देना चाहते थे वृत्रासुर को। तो उसका मन भगवान में कैसे लगा हुआ था, अत्र न संशय, पद हमको बहुत संदेह हो रहा है, आप इसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति का हम लोग उनका अनुभव है कि मंदिर में रहते हैं एकदम प्रेयर हो रहा है, उसे मन भाग जाता है लगता नहीं, उल्वण युद्ध है उसका, इस विषय में मुझको बहुत संशय है, मैं मानता हूं आप सिद्ध महात्मा है, असत्य कथा नहीं बोल सकते हैं, सत्य कहते हैं, लेकिन हमारा संशय बहुत हमारे मन में बहुत संशय है। तो मैंने सुखदेव गोस्वामी कहा भाई तुम्हारा संशय है तो मैं नहीं सुनूंगा, संशय आत्मा मैंने जिसमें सब उसको नहीं श्रद्धा नहीं, नहीं उसको क्या सुनाऊंगा, धन है ना कौतूहलम कौतूहल इगरनेस भी है, मैं सुनना भी चाहता हूँ, संशय तो है हमको मस्तिष्क को मैंने डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन साथ साथ कौतूहल कौतूहल मैंने इगरनेस सुनना चाहता हूँ, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, शरणागत आपका हूँ, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। तो कही। तो प्रश्न यही प्रश्न यही है, मोटा मोटी यह है कि वृत्रासुर का मन पूरा पूरा कृष्ण के चरणों में कैसे लग गया। तो अब इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए देखिए, भक्ति को बहुत दुर्लभ कहा गया है। जहां भी कहा गया है, रूप गोस्वामी जी जब भक्ति के छह करेक्टरिस्टिक छह उनके गुण का वर्णन करते हैं, तो एक उसमें सुदुर्लभ दुर्लभ भक्ति सबको नहीं मिलती है। कैसे वो श्लोक चालू होता है भक्ति श्याम सिंधु का, कैसे शुरू श्लोक का शब्द है क्लेश अग्नि शुभदा क्लेश। शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है कि वो एकदम क्लेश, जीवन के सभी क्लेश दुख हो जाते और सब ऑस्पिशियस ने शुभ उसके डायरेक्शन में आने लगे। मोक्ष लघुता कृति, जिसमें शुद्ध भक्ति आती है तो उससे मोक्ष भी उसके इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। और सुदुर्लभ है, दुर्लभ मतलब बहुत रेयरली हो प्राप्त, सुदुर्लभ। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाय जेहि जा चत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाय, बड़े बड़े योगी लोग सिद्ध महात्मा लोग याचना करते लेकिन प्रायः नहीं मिलता। तो इसी का उत्तर तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं। देखिए बड़ा सुखदेव गोस्वामी सुनू सुनो स्व अवहित एकदम ध्यान से अटेंटिवली सुनो। राज इतिहास इमम यथा, मैं इतिहास वर्णन करता, उत्तर तो आएगा इतिहास वर्णन करने के बाद। वो वर्णन करते हैं कि भक्ति शुद्ध भक्ति कैसे किसको प्राप्त होती है। तो इस वृत्रासुर को उस साधन से प्राप्त हुआ था, लेकिन पूरी कथानक चालू कर दिए और उस कथा का कहते हैं कि श्रुतम, मैंने सुना है। किससे सुना? द्वैपायन से, मैं अपने पिता वेद व्यास जी से इसे सुना। इस उपाख्यान को प्रस्तुत किए हैं, मैंने स्वयं अपने पिता अपने गुरु वेद व्यास जी से इसमें सुना। वेद व्यास जी नारदा तपी, नारद जी भी लगता है कि वेद व्यास जी कभी दो बार। फिर कहते देवला तपी, देवल कृषि हैं। तो तीन तीन एक ही कथा को मैं तीन लोगों से सुना हूं, तो इसलिए सुनो बढ़िया से। तो कथा वर्णन की है, कथा आप लोग जानते ही होंगे, चित्रकेतु महाराज की कथा, जो यही मथुरा के ही राजा थे, इसी प्रदेश के सूरसेन देश इसको कहा जाता है, इधर के आसपास के ही राजा थे। उनके हजारों हजारों पत्नियां थी, लेकिन सब सुख था, सब समृद्धि था, लेकिन जीवन में भारी एक रिग्रेट था कि उनको कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था। तो ऐसे घूमते घूमते यदृक्षा भगवान की कृपा से उनके पास अंगिरा ऋषि आ गए, ब्रह्मा जी के पुत्र है अंगिरा ऋषि, नाम सुने बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है। कृपा का अंगिरा जी आए, ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन ऐसे संवाद होता है, आए तो स्वागत किए राजा, पूछने तो अंगिरा जी पूछने लगे। तो पूछते पूछते एक बात उसने पूछ दिया कि आपके जो पुत्र हैं तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं ना? यही और भी पूछे, बहुत से पूछे, लेकिन समाचार में पूछ दिया कि आपके पुत्र सुशील अच्छा मैंने वेल बिहेव्ड है ना, अच्छा स्वभाव है ना? तो यह सुनने के बाद वो थोड़ा उदासीन हो गए। तो महाराज उदासीन, उनके पुत्र थे नहीं, अरे पूछ रहे हैं कि आपके पुत्र आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, सुशील है ना, स्वस्थ है ना आपके पुत्र? तो उन्होंने अब पूछना क्या कि भगवान किम न विदितम है अंगिरा ऋषि, आपको क्या नहीं किया थे? तपो ज्ञान समाधि भी, तपस्या के द्वारा ऑस्टेरिटी आप में है, ज्ञान है, और ट्रांस समाधि के द्वारा ऐसे आप सब जो जानते हैं, ऐसे जो ज्ञान और तप से ऋषि मुनि लोग मन की बात, अंदर की बात जान जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान को ज्ञात हो जाता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं हमसे, तो मैं कहता हूं अपनी स्थिति बताए। आप यह कह रहे हैं कि मेरी मेरे पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, तो मैं यह बताता हूं कि हमको पुत्र ही नहीं। मैंने तब अब कहने लगे, अब तब पूछ दिए तब तब हमारी आप रक्षा कीजिए। पाही पाही महाभागवत पूर्व स गतम, अब आप मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है, तो इस जीवन में तो हमें दुख है ही, भावी जीवन में निश्चित मैं नरक में जाऊंगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है और वह कोई संतान उसको नहीं होती है, पुत्र नहीं होता है, तो वह व्यक्ति नरक में जाता है, वो उसका निश्चित उस नरक में गिरा, पुण्य नाम एक नरक है, और पुत्र उसी नरक से निकाल देता है, इसलिए पुत्र उसको। तो मैं तो हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं गिरने ही वाला हूं, हमने भर्ज पर एकदम कगार पर खड़ा हूं, जो नीचे गिर जाऊंगा मैं ही नहीं, मेरे पूर्वज लोग भी, पूर्वज जो अंसेस्टर वो भी नरक में गिरने वाले हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए, हमारे हस्तकों जो पूर्वज हैं, क्योंकि संतान परंपरा नष्ट होगी, पिंड दान देने वाला कोई नहीं होगा तो सब गिर जाएंगे, तो मेरी रक्षा तो करना ही, हमारे सैकड़ों पूर्वज हैं उनकी। अरे मैं कैसे रक्षा करूंगा? अब आपके पुत्र आप गिरे तो मैं तो आप कुछ मत कीजिए, व्यवस्था कीजिए कि पुत्र दे दीजिए, और पुत्र हो जाएगा तो स्वाभाविक है हमारे वंश परंपरा कायम हो जाएगी, हमको हमको पिंडदान दिया, हमने पिंडदान किया है, उन लोगों को तो सब लोग बच जाएंगे। तो रिलेक्टेंटली वो तो कुछ शुद्ध ज्ञान देने आए थे, भक्ति देने आए थे, लेकिन देखे कि इतना अभिनिवेश है विषयों में कि यह पृष्ठभूमि उपयुक्त नहीं है, इतना अन्य अभिनिवेश भगवान के अतिरिक्त दूसरे में इतना ऑब्जर्व मन लगा हुआ था। तो ठीक है, उन्होंने जग मंत्र तंत्र का जाए, लेकिन उसी समय थोड़ा हिंट कर दिए कि आपको पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र आपको हर्ष शोक, आपको हर्ष होगा पुत्र के कारण और शोक भी होगा, वैसा हुआ कथा ना आप पढ़े होंगे, जान रहे हो कथा। एक रानी को कृत दूती नाम था, सबसे ज्येष्ठ पत्नी थी उनकी, उसे पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र हुआ तो राजा थे पूरा पूरा अन्य रानियों की तरह भूल ही गए, पूरा पूरा इनका इंटेंशन उस लड़के पर, उस उसकी माँ पर, बस इसी तरह रहते, इनके पास ही रहते थे। उन स्त्रियों को बड़ा बुरा लगा कि हमारा जो पति से हमारे प्रेम करते थे महाराज चित्रकेतु, हमसे अब क्यों उदासीन हो गए हैं, इसमें कारण यही लड़का बन गया, यही बीच में बाधा बन। तो उसको शत्रु ने मारा, बस ये हम लोगों से हमारे पति प्रेम कर अब क्यों नहीं करते हैं, क्यों बीच में आ खड़ा हो गया। देखिए प्राकृत जगत है यहाँ का संबंध। तो एक दिन कहीं लड़का छोटा सा बच्चा था, सोया था, वो सब मिस्त्रियां कंस्पिरेशन करके कंस्पिरेसी कर मंत्रण की और उसको 20 तक मार दी। हमला पुत्र है तो इसको क्यों होना चाहिए, उसकी सौतेल माँ थी, वो भी सौतेल ही माँ थी, लेकिन अब लड़का मर गया, लड़का मर गया तो मैंने अब पूरा राज परिवार जो सारी प्रजा, क्योंकि वो एकमात्र राज्य का उत्तराधिकारी, सारी प्रजा बड़े बड़े नागरिक लोग इकट्ठा हुए, सो रो रहे हैं, स्त्रियां रो रहे, बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। तो बहुत रोने का है विवरण। उसी समय जब एकदम रो ही रहे थे सभी, मतलब सब लोग रो रहे थे, जिसका पुत्र मर गए, इकलौता पुत्र, राजा और रानी तो रो ही रहे थे, सारी प्रजा रो रही थी। उसी समय नारद फिर से अंगिराजी आए, और अंगिराजी आए तो बोलना चालू किए, तो उन्हें पूछना है, पूछे हैं कि ज्ञान देना था, तो बड़ा विचित्र ढंग कि पूछे कि आप लोग रो रहे हैं, विशेषकर राजा रानी रो रहे हैं, तो यह जिसके लिए आपका क्या लगता था, मैंने जो मर गया है ये क्या आपका लगता था, जो क्या लगता है जिसके लिए आप इतना दुखी हैं, आपका संबंध क्या है। उस क्रम उन्होंने ज्ञान चालू किया कि जीव कैसे एक साथ में आते हैं, कैसे बिछुड़ जाते हैं, यथा प्रयांति संयांति स्रोत वेगे न बालुका, बहुत ज्ञान का उपदेश दिए। तो ज्ञान का थोड़ा सा उपदेश सुना, कुछ ठंडा हुआ दिमाग, सो तो पूछे कौ जुआ आप दोनों कौन है, पहचान नहीं आया। अंगिरा तो पहले भी आए थे इनके घर, लेकिन अब थोड़ा भेष बदल कर आए थे, पहचान। अब नारद जी को भी नहीं पहचानते थे, हालांकि नारद जी का तो उनको पहचान लेना चाहिए, लेकिन वो भी थोड़ा सा लगता है कि बीड़ा लेकर नहीं आए थे, थोड़ा भेष। कौ युवा आप दोनों कौन है, और उनके ज्ञान संपन्न, आप ऐसी बात रहे कि दोनों बड़ी ज्ञान आप में है, ऐसे थोड़ी सा भी बोल रहे हैं, लेकिन आप तो लगता है कि बड़ी ज्ञान का भंडार आपका माथा में पूरा पूरा ज्ञान भरा हुआ है। तो यहां आप कैसे कौन है पर तो अपने ही को क्लियर करने के लिए कहे कि अरे बड़े बड़े साधु हमने सुना है कि वह घूमते हैं, वह घूमते हैं, तो बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि आप सुन सबका नाम ले लिया, और इन लोगों का भी नाम लिया कि बड़े बड़े साधु महात्मा, उनमें से तो कोई आप नहीं है, कोई नारद जी का भी, अंग्रेज का भी, और भी बहुत लोगों का साधु। तो ज्ञान देने के बाद यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है कि देवल जी ही ज्यादा लगता है कि बोल रहे थे, तो अब तो कुछ हो गया, तो ज्ञान तो हो ही गया, तो नारद जी ने कहा कि मैं तुमको मंत्र भी दूंगा, ज्ञान तो हो गया लेकिन मंत्र, और इसके बाद मंत्र देने के बाद नारद जी की ऐसी योग शक्ति थी, उन्होंने उस जीव को पुनः शरीर में डाल बुला दिया, जो लड़का उसका प्राण चला गया, लड़का आकर शरीर में आ गया, फिर से आया, और जीवात्मा जो था, जीव था वही लड़का, वह बोलना प्रारंभ किया। तो वह जो बोल रहा है तो उसी को, तो जब बोला आया तो नारद जी ने कहा कि हे प्रिय पुत्र जीवात्मन, देखो भाई तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, और फिर शरीर में प्रवेश कर जाओ, फिर आ जाओ, क्या छोड़कर चले गए, शरीर में आ जाओ, और क्योंकि इसे क्यों आऊं, तो तुम्हारे जो सगे संबंधी है, माता पिता है, सब रो रहे हैं, उनका शांति हो जाएगी आ जाने। अरे हूं उन लोगों की शांति, हम क्यों आए इस शरीर, अरे ना ये राजा का शरीर है, ये तुम नहीं जानते, इस शरीर में आओगे तो बाप कलेवरम स्वम आविष्य, अपने शरीर में जिसको शरीर को छोड़कर इसे प्रवेश करो, और शेष आयु जितना लॉन्ग ड्यूरेशन जो बचा हुआ है उसमें रहो, और भुंक्ष भोग राज्य, राज्य भोग, राजा बनो, राज गद्दी पर तुम बैठे हो, राजा का एकमात्र उत्तराधिकारी हो, उसका उत्तराधिकार को स्वीकार करो, भोग बढ़िया से राज्य, कितना सुख संपत्ति से कितना मिला पता नहीं कहां जा रहा। तब वह लड़का बोला, तो बोलने से पहले का माता पिता किस कौन, किस जन्म की माता पिता, अरे मैं तो मैंने हजारों करोड़ों करोड़ एक दूसरे से शरीर में जाता हूं गया, और वहां हर एक बार कोई माता पिता है, तो आप कह रहे हैं कि अपने माता पिता को सुख दो, तो किस इन, ये तो है लेकिन हजारों और वह जीव बोलना चालू। नारद जी की क्षमता थी, मरा हुआ लड़का बोलना चालू कर, तो वही कहते बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्र उदासीन और विदूषक। इस दुनिया में कोई बंधु है, दोस्त यहां पर उपाय फ्रेंड मित्र, ज्ञाति मैंने परिवार से जिसका संबंध हो, परिवार से ज्ञा कुटुंबी, और शत्रु कोई होता है, कोई मध्यस्थ होता है, कोई उदासीन होता है, ये सब क्रम से ऐसे बनते रहे। सर्वम एव ही सर्वेशां भवन्ति क्रमशः। आज जो हमारा मित्र है वही क्रम से हमारा शत्रु बनता है, आज जो पिता है वही हमारा पुत्र बनता है, क्रम से होते रहते हैं। तो ये जो माता पिता का और ये संबंध है इसका बहुत कुछ गहराई नहीं है, तो ऐसा ही होता रहता है। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं व्यवहार सिद्ध है, व्यवहार में सब लोग देखते हैं, आप लोग अनुभव सबको है, कभी ऐसा समय रहता है कि हम लोगों का किसी से बहुत बनता रहता है, बहुत मित्रता रहती है, कुछ वर्षों के बाद कुछ कारण बन जाता है कि वही व्यक्ति जो वैसे तो अनंत कृष्ण महाराज बोल देते हैं, हमें तो बोलने बस, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं इधर प्रचलित लंगोटिया यार कहते हैं, सुने हैं एकदम एकदम मित्रता, इतनी गहरी मित्रता है कि मैंने एक दूसरे के बिना वही कुछ ही दिन कुछ वर्षों के बाद पता लगता है कि एकदम से जानी शत्रु बन गया। ये व्यवहार में सबको अनुभव, आज मित्र है तो कभी शत्रु है, कभी बहुत जिसे शत्रुता थी वो तो मित्रता हो जाती है। मित्र अथवा शत्रु, परिजन अथवा बाहरी लोग, जैसे संबंध वास्तव में हमारे भिन्न भिन्न व्यवहारों से उत्पन्न होते हैं। मैं व्यवहार से उत्पन्न होता है, सत्वगुण व्यवहार रहता, कोई मित्र बना हुआ थोड़ा सा ऐसा कुछ खटपट हो गया तो शत्रु बन गया। और जो ये संबंध होते हैं मिलने का, तो उसने पहले भी उन्होंने ही बताया है प्रभुपाद जी यहां पर थोड़ा सा उसमें कोट भी करते हैं, यथा प्रयांति संयाति से स्रोत वेगे न बालुका। हमारा जो संबंध है जैसे आप बोलते नदी की धारा बहती है तो उसमें बालू भी आगे बढ़ता रहता है, तो एक बालू दूसरे बालू के कभी साथ हो जाता है, और कभी कभी होता है कि बह रहा है बालू तो दो बालू एक साथ हो गए, तो स्रोत वेग से अलग हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हम लोग इस भाव प्रवाह में बह रहे हैं, और उसी बहते बहते कभी कभी एक साथ हो जाते हैं और कभी कभी अलग हो जाते हैं। हमारा कोई प्लान नहीं काम कर, हमारी इच्छा उसमें नहीं होती है, ऐसे वैसे ही काल का जो वेग है, टाइम फैक्टर है, तो कभी हमको दो जीवों को मिला देता है, तो हम समझते हैं कि हमारा संबंध परमानेंट है, ये सब होता नहीं, दूसरे क्षण अलग हो जाएंगे हम लोग। तो यह सब व्यवहार से होता है, इसमें कोई वास्तविक सत्ता नहीं है कि हमारा कोई पिता है कोई माता है, ऐसा काल कर्म के भाव से कोई आज एक साथ हो गया है कल अलग हो जाएगा, तो इस तरह का उसने जीव ने ज्ञान दिया। ऐसे तो अंगिरा ऋषि तो कह चुके थे, ज्ञान हो ही गया था, मंत्र दे दिया, नारद जी परिपुष्ट हो गया, लेकिन वह लड़का जी बोलने लगा तब तो सबकी आंख खुल गई, सब एकदम ज्ञान हो गया, और महाराज चित्रकेतु अपना शोक त्याग दिए। फिर नारद जी ने जो बताया था, मंत्र बताया था, कैसे उन्होंने नारद जी की कृपा से उसका जप किया, भगवान की परम सिद्धि उनको प्राप्त हुई। तो किसी भी व्यक्ति में भक्ति आती है भगवान के भक्त की कृपा से, तो चित्रकेतु में पर नारद जी की अथवा अंगिरा जी की कृपा थी। तो जिसमें भक्ति आती है तो किसी भी परिवेश में, जिसमें एक बार भक्ति आ गई, नेहाभिक्रमणाशस्ति प्रत्यवायोन विद्यते, तो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है तो वो स्वतंत्र होता है, भगवान की भक्ति वो किसी चीज पर आश्रित नहीं है, भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। हम अपने कर्मों के अनुसार चाहे किसी भी जोनी में चले जाएंगे, हमारी आर्थिक सामाजिक शारीरिक कुछ भी अवस्था होती है हो सकती है, लेकिन यदि किसी भगवान की भक्ति भक्ति की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त है तो भक्ति अक्षुण रहती है। तो यद्यपि महाराज चित्रकेतु को भक्ति प्राप्त हुई थी नारद जी की कृपा से, लेकिन कुछ ऐसे प्राक्तन कर्म के कारण कोई ऐसा प्रारब्ध उपस्थित हो गया जिसके कारण वो असुर जन्म में गए थे, लेकिन वहां भी भक्ति उनकी इंटैक्ट थी, उसमें थोड़ा भी खरोच नहीं आई थी। तो इसी बात को कहने के लिए यह उपाख्यान चालू किया है। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण यही गा यही जा चत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोई पर। भक्ति दुर्लभ है लेकिन प्राप्त हो गई नेहा भी क्रमणा सृष्टि प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतु महतो। तो महाराज चित्रकेतु के रूप में उन्होंने जो भक्ति प्राप्त की थी, और वह भक्ति जब यद्यपि कि वह कर्म से अपने भाग्य से प्राक्तन कर्म से पूर्व के कर्म से प्रारब्ध के कर्म से असुर बन गए थे, तभी वहां उनकी भक्ति अक्षुण थी। ठीक है, हम कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। पहले वो खड़ा हुए थे पीछे कोई। नहीं समझा क्या कोई भक्त है तो उसके भक्त भगवान के भक्त की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। अब हम मैं क्या जानता क्या नहीं कर रहे हैं तो आप सच में क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं कर रियली हम क्यों करना चाहिए हम क्या वृत्रासुर तो हम संक्षेप में बता देना, आगे कथानक है, नारद जी ने उन पर कृपा किया है, दोनों कृपा किए, उनको भक्ति प्राप्त हो गई थी तो रही थी। आगे तो लंबा कथा है ना। ठीक है, कृपा जिसे कहते हैं मर्सी जो किया जाता है ना, तो वह कोई ऐसा नहीं है कि वो अब्लाइज है देना ही चाहिए। कृपा समय कृपा इसे जैसे कोई चीज लेने का हमारा अधिकार होता है ना, वो तो ले लेते हैं, देना ही पड़ता है उनको कोई चीज, लेकिन कृपा है तो उन पर उनकी इच्छा पर निर्भर है। आप उसकी भिक्षा मांग सकते हैं तो बाध्य नहीं करते आपके, ऐसा नहीं कि आप उसको स्टाम्प पेपर पर लिखाएंगे उम्र कृपा कीजिए, उसे ऐसा कोर्ट में ले जाकर नहीं लेते, स्टाम्प पेपर पर लिखाएंगे। और उधर से भी अब लोग यही मानते हैं कि जब तक वो स्टाम्प पेपर पर नहीं तब तक कृपा हुई नहीं है। कृपा तो करते ही रहते हैं, भक्तों का करेक्टरिस्टिक वर्णन किया गया है तो यही कहा गया है कि कृपालु होते हैं भक्त। ठीक है, अब तो तो कृपा तो हुई है, कृपा ही भक्तों कृपा किए हैं तभी ना ऐसा सुयोग मिला है कि भगवान के मंदिर में भगवान की भक्ति में आए, भक्तों का संग मिला है, तो कृपा है तभी ना। वो तो प्रभु जी कह रहे हैं कि तो ऑलरेडी है ही कृपा तो है तभी ना, कृपा का ही फल है ना कि भागवतम कक्षा में बैठे हैं फिर प्रसादम श्रील प्रभुपाद की।